हंसा तम तुम्हें विहाय छोड़कर मम मुझको बंधो हे मित्र गतः चला गया ग्राम्य भौतिक मति ही चेतना महिम पृथ्वी पर विचरण घूमते हुए पदम पद अद्राक्षी ही तुमने देखा कयाचित किसी के द्वारा निर्मितम निर्मित स्त्रिया स्त्री द्वारा हे मित्र तुम मेरे वही मित्र हो जब से तुमने मुझे छोड़ा है। तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब जीव नीचे गिरता है तो वो भौतिक जगत में आता है। जब जीव नीचे गिरता है तब वो कहाँ आता है? भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत्त्व से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंग शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंग शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या कि विभिन्न शरीर शिकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वो उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वो उच्च जनियों में घूमता है तो कभी निम्न जनियों में। इस प्रकार वो अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है श्री चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जीव अनेक जोनियों में घूमता रहता है किंतु वो भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्रों से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि रूप में भेंट होती है। वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी ये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वो न तो कृष्ण न उनके प्रतिनिधि के आदेशों की गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्यमति कहा गया है। ग्राम्यमति का अर्थ है इंद्र तृप्ति। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंदर। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख है, फलतः ये अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। यही पे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो हम लोग क्रम से सुनते हुए आ रहे कि जब मल्लध्वज राजा थे, मल्लध्वज राजा जब उसका शरीर समाप्त हो गया, मतलब शरीर से प्राण चला गया, तो उसने मल्लध्वज राजा उस सिंहासन पर ऐसे बैठे थे जैसे बिल्कुल बैठे थे किंतु शरीर से प्राण नहीं रहा। तो उस समय जो वैदर्भी जो उनकी पत्नी थी, वैदर्भी ने पूर्ववत सेवा करने लगी कि किंतु जब उनका चरण स्पर्श किया तब देखा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, तब सोचा कि शरीर से प्राणवायु चला गया। तो उस समय वो अकेले बिहड़ वन में, घना जंगल वन में अकेले रोने लगी और धीरे धीरे से सोचने लगी क्या किया जाए। फिर उसका जंगल से लकड़ी बीन बीन करके एक सज्जा मतलब चिता बनाकर उसमें सलाया, फिर सोचने लगी अपना शरीर भी उसमें सती होने का विचार किया कि सती मतलब उसका शरीर भी नाश कर देंगे। फिर उसी समय उनका एक मित्र आया, अभिज्ञात सखा के नाम से एक मित्र, तत्र पूर्वतर कस्य सखा ब्राह्मण आत्मवान शांतन वल्गुण सामना तामाह रुदतिम प्रभु। ताम आह उस स्त्री ने स्त्री से कहा, सखा अभिज्ञात सखा ने स्त्री से कहा मधुर वाणी से, हाँ तुम कौन हो, कातम कश्यासी, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो। सयानो जस सोचसी, जो सोए हुए वो कौन है। जानासी किम सखाय मम जेनाग्रे विचचर्थ, तुम जानते हो कि मैं पहले तुम हमारे साथ विचरा करते थे, मैंने एक साथ रहते थे, तुम्हारा कुछ ज्ञान है। तो ये जो मल्लध्वज राजा एक गुरु हुए, एक गुरु थे, ये जो पत्नी वैदर भी इस शिष्या थे, शिष्या के रूप में मतलब ये रूपक कहानी के रूप में है। तो रूपक कहानी में जो मल्लध्वज राजा है, मल्लध्वज राजा कौन, एक गुरु के रूप में और वैदर भी शिष्या के रूप में, और अभिगत सखा जो है ये परमात्मा के रूप में। देखिए भगवान की कितनी करुणा है, जीव जहाँ जाते उसका हमें साथ में रहते, ये भगवान की करुणा है। जैसे एक माँ कितनी वात्सल्यमय होती है, जैसे बच्चा गीले में मतलब आपने भोजन ना करके बच्चे को भोजन कराते, स्वयं गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाते हैं, मतलब कितना ममता है भगवान की। एक बिंदु कना, एक बिंदु जो ममता है, जो करुणा है, सारा जगत में समस्त माताओं के अंदर ममता को रख दिया। एक बूंद ममता जो है, करुणा है, सारा जगत जितनी माताएं हैं सबकी माताओं के अंदर रखा। तो एक माता के अंदर कितनी ममता है, कितनी करुणा है अपने बच्चों के प्रति। और जो करुणा सिंधु जो प्रभु है, हाँ, वो प्रभु अपने जीव को अपने पास लौटाने के लिए कितनी ममता है। देखिए आप इस श्लोक में भगवान की करुणा, भगवान की जो वात्सल्यता का झलक दिखाई दे। कातम कश्यासि कोबायम सयान जिस सोचे से जानासि किम सखा मम जेनाग्रे बीच चतुर्था। अभिगत सखा पूछने लगे कि तुम किसकी कौन हो, तुम किसकी पति किसकी पुत्री हो, जो यह सोए है वो किसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वो कौन है, हाँ आप पहले मैं तुम्हारा सखा था, ये तुम्हारा कुछ ज्ञान है। तो मन पूछ, वो बोल रही है वैदर्भी कौन है, मल्लध्वज की पत्नी। वैदर्भी जो है ये पूर्व जन्म में राजा पुरंजन जब स्त्री की चिंतन करते करते उस स्त्री जोनि की प्राप्त हुई, हाँ तो स्त्री जोनि जब, और वैदर्भी विदर्भ नरेश के राजा के कन्या के नाम वैदर्भी, ये वैदर्भी की शादी हुई किसके साथ, मल्लध्वज राजा के साथ। तो ये वैदर्भी कब पूर्व का स्मरण करा रहे हैं कि अच्छा वैदर्भी माने पूछ सकते बोल सकते कि मैं नहीं जानता आपको, ननु अहम किम न जनामे, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अभिगत सखा को कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, तो कह रहे कि अपि स्मरसि, स्मरण तो हो सकता है, स्मरण तो कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं, किंतु स्मरण जैसे यहाँ सभा हुई है, यहाँ कथा चल रही है, भले कोई भूल सकते जान नहीं सकते मैं नहीं जानता हूँ, किंतु स्मरण एक रह जाता है कि नहीं स्मरण में यह हुआ था कुछ। अपि स्मरसि, क्या स्मरण है तुम, च आत्मानम अभिगतम सखम सखे हित्याम पदम अन्विच्छम भौम भोग रतगत, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, भोग में चले गए हो, भोग में, भोग जिस भौम भूमि, भोग भूमि यहाँ मुझे छोड़कर यहीं पे चले गए। किंतु भगवान देखिए पीछा नहीं छोड़ते, जब तक जीव की उद्धार ना हो तब तक साथ में रहते। हंसो अहम चतम, दोनों हंस थे, सखायो मानो सायनो, मानो सर में दोनों, हम दोनों हंस थे और कोई निवास स्थान नहीं था, एकला रहे, दोनों एक साथ रहते थे। जो कोई घर बना हुआ है दोनों एक साथ दोनों घर में रहते थे ऐसे बात नहीं है, दोनों एक ही साथ रहते थे। अभूतम अंतरा ओ को, कोई अंतर नहीं था, एक ही निवास था। सहस्र परिवस्तरण, हजारों वर्ष तक रहे, किंतु 22 लोक में है। सतम विहाय माम बंधो, हे बंधो तम माम विहाय, ग्राम्यमति स ग्राम्यमति, तुम्हारी ग्राम्यमति, ग्राम्यमति मतलब इंद्र तृप्ति के लिए तुम मुझे छोड़कर सतम, हाँ सतम माम विहाय, मुझे छोड़कर, क्योंकि तुम ग्राम्यमति हो, ग्राम्यमति मतलब इंद्र सुख की लालसा से माम विहाय, माम परिहित, माँ परिहित कर कहाँ चले गए, महिम गत पृथ्वी की ओर चले गए हो, पृथ्वी चले, पृथ्वी ते चले गए, हाँ पृथ्वी ते जाकर क्या किए ना, भोग में व्यस्त हो गए। हाँ विचरण पदम अद्राक्षी, हाँ कयाचित निर्मितम स्त्रिया, ये जो जड़ा प्रकृति स्त्री के नाम से भी जाना जाता है, स्त्री ने जो रचा है ये जड़ा प्रकृति, प्रकृति जो है किसी स्त्री ने निर्मित किया है, प्रकृति स्त्री ये सब एक ही वाचक है। ये जड़ा प्रकृति जो है इसमें तुम भोग में लिप्त हो गए। विचरण पदम अद्राक्षी, घूमते और यहाँ आके विभिन्न जोनियों में घूमने लगे, विभिन्न जोनियों में घूमने लगे, कभी मतलब 84 लाख जोनियों में भटकने लगे। हाँ सतम विहाय माम बंधो गौत, देखिए यहाँ तो पहले अभिगत सखा ने सखी नहीं कहा, हे सखे, क्योंकि पूर्व जन्म में पुरंजन स्पुंगलिंग में थे, पुरुष थे, अभी स्त्री बन गए, किंतु पूर्व स्मरण करा रहे, हे सखे तुम आज स्त्री हो, किंतु पहले कौन थे, सखा थे, इसलिए सखे संबोधन कर रहे, हे सखे, हे बंधो, मतलब पहले का स्मरण करा रहे कि दोनों एक साथ दोनों मित्र थे, हैं हे बंधो ग्राम स ग्राम्यमति, हाँ स ग्राम्यमति माम विहाय महिम गत, मुझे छोड़कर पृथ्वी पर चले गए। अब पृथ्वी क्या है, वो किसी स्त्री ने निर्मित किया है, प्रकृति बहिरंगा शक्ति जो है ये इनके तरह रुचि हुई है, इसमें जाकर तुमने भोगों में व्यस्त हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जीव नीचे गिरता है तो भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या कि विभिन्न शरीर शिकार करके इधर उधर भटकता रहता है। कभी वो उच्च लोकों में भ्रमण करता है, कभी निम्न लोकों में जाता है, कभी उच्च जोनी में जाता है तो कभी निम्न जोनी में जाता है, क्योंकि एक कर्म बस, कर्म के बस के अनुसार, विविध कर्मों के अनुसार जीव घूमता रहता है, तो कभी निम्न जोनी में, इस प्रकार अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहे, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी, गुरु कृष्ण भगवान जीव को लौटाने के लिए बहुत साधन दिया, जैसे धाम दिया, नाम दिया, रूप दिया, उनकी लीला का स्मरण करने के लिए दिया, इसी का स्मरण करके हम भगवान के पास जा सकता है। किंतु हम इसके उपदेश को, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम गुरु कृष्ण का उपदेश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। काल जो गुड़ा के बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि हम लोग का उत्कंठा नहीं है, हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए कोई लालसा व्याकुलता नहीं है, इसलिए कोई उपलब्धि नहीं हो पा रहे, कि इतना सुंदर भूमि ब्रज भूमि जिसका एक कण जो है एक रज कण के समान करोड़ों चिंतामणि करोड़ों कल्पवृक्ष को हेय कर देते हैं। ये ब्रज भूमि जो हम बैठे हैं इस भूमि में, ये भगवान बहुत जन्म जन्म की कृपा करके धाम जीवों को देते हैं, सबको नहीं देते। ये ब्रजधाम सबके भाग में नहीं मिलता है, किंतु इस धाम को प्राप्त करके भी हम इस धाम का लाभ उठा नहीं पा रहे। इसका कारण हमारे चित्तवृत्ति हम ग्राम्यमति है। ग्राम्यमति जब तक रहेगा तब तक कृष्ण में मन नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण कहते हो गीता में क्या कहते कि कहने के भगवान कहते कि बुध रमते बुध क्या श्लोक है रमते बुध ओ भोग में भोग हाँ जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जनय एवते। ये दुख का जनी है, ये जो घर है भगवान ने जो बहिरंग शक्ति की तरह बनाया है ये दुख का जनी है। ये थोड़े सुख मिलेगा यहाँ हाँ सद हाँ। तो भगवान जे ही संस्पर्श जा भोगा ये संस्पर्श जनित जो भोग है ये दुख की जनी है, किंतु हम इसको सुख मानकर इसमें रमना इसमें सुख लेना चाहते हैं। किंतु भगवान लिखते कि नहीं, ये जगत जो है दुखालय अशाश्वतम। कोई कुछ बना के उसमें बोर्ड में लिख देते हैं ये जगत कैसे है दुखालय है अनित्य है, किंतु इस पर हम लोग को कोई ध्यान नहीं है। हम ध्यान है हम अच्छा से रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती में रहेंगे हैं, कोई परवाह नहीं। विकलता होना चाहिए, हृदय में रोना आना चाहिए कि भाई मेरा जीवन व्यर्थ जा रहे हैं, भगवान में कोई आसक्तिपूर्वक भजन नहीं हो पा रहे हैं, शुद्ध केवल एक रूटीन जैसे रूटीन माफिक एक जस्ट सर्कल घूम रहे हैं। नहीं, एकदम पूरा दृढ़तापूर्वक संकल्पपूर्वक जीवन को बिताना चाहिए। तो और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखे कि हम लोग इसमें इस उपज भगवान देखिए कृपा कितना मोह कृपालु कितना सब कुछ भेज दिया। गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज जीवेर कृपाई कह लो कृष्ण वेद पुराण। जीवेर जीव को कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण शास्त्र संत महापुरुष को भेजते कि जीव के किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। ये भगवान की करुणा है। ये करुणा पर हम हमेशा हम लोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए भगवान की कितनी कृपा है हमारे पर। हमारे पर कोई अगर मारे भी कुछ दुख भी दे कुछ कष्ट भी दे इस पर कृपा समझना चाहिए कि भगवान मुझे थप्पड़ मार के उन रास्ता पे ले जाना चाहते। कभी किसी पे दोषारोप नहीं कर सकते। कोई मुझे गाली दिया अपमानित किया तिरस्कार किया ये भगवान की कृपा समझना चाहिए कि मैं कितना मूढ़ हूँ कितना दुर्बुद्धि मेरा अंदर है कि मैं भगवान की तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए भगवान कृपा कर जब किसी को दुख देता है ये भगवान की कृपा है, किंतु हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम इतना भजन कर रहे हैं हमारा इतना बड़ा रोग कैसे हो सकते नहीं। कृपा मतलब भगवान विशेष जब किसी को कृपा करते हैं उसको इस प्रकार से जैसे हम अनुगृहा में हरिश्र तनम सुने उसको सब कुछ मैं छीन लेता हूँ, किंतु इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान कि सुखपूर्वक भजन हो जाए। अनुकूलता से भजन खंडित होता है, प्रतिकूलता से जो भजन होता है वो कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए प्रतिकूलता वंदनीय है, अनुकूलता निंदनीय है त्यज्य है। अनुकूलता कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, कभी भी चैन से भोजन नहीं करना चाहिए। बढ़िया से भोजन मिला चलो बढ़िया से प्रसाद पाले नहीं। रामानंदी संप्रदाय में आप लोग कभी देखेंगे उन लोग कैसे भोजन करते जानते, जैसे लगते कि एकदम पंछी जैसे आराम से बैठते नहीं, अच्छा से जैसे ऐसे बैठ गया ऐसे नहीं बैठते, वो लोग पंछी की तरह बैठते हैं। जैसे मतलब जैसे खान मान सेकेंडरी थिंग्स, वो खान पान के लिए उतना ध्यान नहीं देते, किसी का थोड़ा सा उदर पूर्ति हो जाए हाँ, उनका ध्यान भगवान के प्रति लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे प्राप्ति करना है प्रभु को हाँ। इसके लिए एक छोटी सी कथा से एक एक भक्त नाम था प्रयागराज। क्या नाम था? प्रयागराज। तो प्रयाग के जन्म से पहले उनके पिता माता कोई संतान नहीं था। कैसे प्रयाग का जन्म हुआ? प्रयागराज का कोई पुत्र नहीं था। तो उस समय माता पिता ने क्या करते थे ना, कुछ व्रत वगैरह करते थे। जिससे किसी का संतान नहीं होती तो कुछ व्रत करते, कुछ नियम पालन करते। तो प्रयागराज में जाकर महीना भर व्रत किया कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो एक महीने जब व्रत के जब आए तो प्रयागराज की कृपा से प्रयागराज का जन्म हुआ। तो प्रयागराज जैसे जन्म हुआ, जन्म लेते ही प्रयागराज के जो पिता थे उनका शरीर पूरा हो गया, संत हो गया। कुछ दिनों के बाद घर में आग लग गया। कुछ दिनों के बाद घर में पूरा आग लग गया, पूरा सब सामान नष्ट हो गया। तो सभी लोग कहने लगे कि प्रयागराज एक मतलब अच्छा संतान नहीं है, मतलब ये कुछ कलंक जनित है, मतलब कुछ अशुभ लक्षण जनित है, अशुभ लक्षण के है। क्योंकि इन जन्म लेते इनका पिता का शरीर पूरा हो गया, कुछ दिनों के बाद घर जो घर में जितना सामान था वो भी जल कर राख हो गया। अभी जो माँ और बेटा दोनों क्या किया, पूरा एकदम निष्ठ अवस्था माने भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करने लगे। तो एक दिन प्रयागराज पड़ोस में देखे जे राखी बंधन हो रहा है, राखी बंधन बहन दीदी मतलब बहन जो है भाई के हाथ में राखी बांध रहे हैं। तो आज मिठाई भी खिला रहे, ऐसे राखी बंधन का नियम भी है, हाथ में राखी भी बांधते मिठाई भी खिला दे। तो प्रयागराज कहे कि मुझे तो कोई राखी तो नहीं बांधते, हम मुझे कोई मिठाई भी नहीं खिलाते। तो माँ के पास आया, माँ से कहने लगे, माँ मेरी दीदी कहाँ? हाँ मेरी दीदी कहाँ? बोले दीदी दीदी तो क्या उत्तर दे, कोई जवाब नहीं है। तो उस समय अवधपुरी में जो वृद्ध माताएं होती है तो सीता जी को बेटी मानती थी, बेटी मानते, और जो कम अवस्था वाली माताएं हैं वो सीता जी को बहन मानते। तो प्रयागराज के माँ ने बोले, बेटा तेरी दीदी जनक अयोध्यापुरी में है, और तो मुझे वहाँ जाने दो, वहाँ से किसी प्रकार से मुझे जाने दो, मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ। कहे कि बोले, बेटा तुम बहुत छोटा हो, जब सियाना हो जाओगे तब तुमको वहाँ भेज देंगे, जब सियाना हो जाओगे बड़ा हो जाओगे तब तुमको वहाँ भेज देंगे, तुम अभी बहुत छोटा है। तो चार पाँच दिन के बाद उत्कंठावश, हाँ देखिए बेकुल था, देखे ना, मुझे दीदी से मिलना है। बोले बेटा अभी बहुत छोटा है, हाँ। तो बेटा का हार्ट का रोक नहीं पाया, माँ ने कहा कि ठीक है। तो उस समय जनकपुर से अवधपुरी मतलब अयोध्यापुरी से लोग जाते रहते थे, मैंने कभी कभी लोग मैंने जाते रहते थे। तो सोचे कोई जाए तो उसके साथ बेटा को भेज देंगे। तो उस समय कुछ लोग जा रहे थे, कुछ परिवार, तो कहे कि बहन जी हमारा बेटा भी जाना चाहते हैं, वो बहुत हर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप ले जाइए, फिर लेकर आना साथ में। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो हमारे कोई बच्चा जा रहे साथ में जाएगा तो क्या है, चलने दीजिए। तो प्रयागराज का मन में बहुत बहुत मतलब तीव्र लालसा, मेरी दीदी से मिलना है। तो जब जाते जाते समय, हाँ मतलब देखे ये लोग बहुत धीमे चल रहे हैं, बहुत धीरे से चल रहे हैं, उनका धीर पसंद नहीं है, उनको तेज तेज से भागना है। हाँ अयोध्यापुरी बहुत तेज से चले गए, बहुत तेजी से अयोध्यापुरी पहुँच गए। तो और माँ जाते समय वही क्या नाम प्रयागराज के हाथ में कुछ चाल को स्पेस पीस करके कुछ मीठा मिलाकर लड्डू बना के दिया था कि बेटा तेरी दीदी को देना, हाँ बुआ जी जीजा जी बहुत व्यस्त है इसलिए आ नहीं पाती है। तो ये जो चाल को पीस करके, हाँ, और उसमें कुछ मीठा मिला करके छोटा लड्डू बना दिया। तो लड्डू से लाडू लाडू लेकर छोटा सा बच, और साथ में छत्तू दिया था कि बेटा कोई भूख लग जाए तो छत्तू पी लेना, ये छत्तू तुम्हारे लिए और जो लाड्डू है ये तेरी दीदी के लिए। तो बहुत अच्छा लेकर गए साथ में। जब अयोध्यापुरी में पहुँचे, अयोध्यापुरी में जब पहुँचे तो सब लोग से पूछने लगे, मेरी दीदी कहाँ? हाँ मेरी दीदी कहाँ? तो दीदी तुम्हारा कौन है? ना मेरी दीदी सीता जी है, जीजा जी राम जी है। पूरा परिवार का एड्रेस बता दिया। बोले चले जाइए उधर कनक भवन है, वहाँ पहुँच जाइए। तो कनक भवन में जब जाकर देखे, पूछने लगे, ए सीता जी है राम जी? बोले मूर्ति नहीं है, दीदी दीदी है, वो बात बोलनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। हाँ दीदी, मेरी दीदी है सीता जी, जानकी जी और जीजा जी राम जी, मुझे बात करना है। हाँ बोले तो बच्चा पालक पागल हो गया, तो इधर उधर उनको घुमाने लगे, ए मंदिर चले जाओ, ओ मंदिर चले जाओ, ओ कोई सब जगह देटी सब खड़े हैं, कोई बात नहीं करते हैं, उनका पसंद नहीं आया। तो एक जगह जाकर रोने लगे बहुत। देखिए रोना ही भजन, मेरा कहने का उद्देश्य है, तड़पन जो है, जो व्याकुलता है, यही भजन है। भजन का परिभाषा, सारा दिन भर भजन करना अच्छा है, किंतु वो लक्ष्य जो ओ भजन, ओ नाम अभी तक मेरा जीव में नहीं आया, जिस समय मतलब व्याकुलता आ जाए, उस पाने के लिए वही एकमात्र लक्ष्य बन जाए, अभी वो लक्ष्य नहीं बन पाया। तो रोने लगे, मैंने बहुत दहाड़ मार के रोने लगे, तो कि मुझे दीदी नहीं मिला अभी तक। हाँ तो जब थोड़ा सा तंद्रा आया, तंद्रा आते ही देखे कि ये बहुत सुंदर शंख घंटा मृदंग करताल के आवाज़ सुनाई पड़े, और देखे सुंदर चामर व्यंजन कर रहे हैं, सुंदर झांकी का दर्शन हो, राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब परिवार का, सबका झांकी का दर्शन हुआ। तो जब आँख खोला देखे, अरे बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर ठाकुर जी का दर्शन हुआ, तो दीदी के जाके गोद में बैठ गया। हाँ दीदी दीदी, मैं कितना समय से आपके इंतजार कर रहा था, अब मिले नहीं। हाँ जब बोले थोड़ा लेट विलम्ब हो गया, दीदी ने कहा कि ऐसे 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 काम, जीजा जी काम, तुम्हारे जीजा जी के काम में ऐसे ऐसे व्यस्त रहे, इसलिए आ नहीं पाया। तो बोले क्या, माँ ने क्या दिया? माँ ने क्या दिया? तो कहे कि देखिए लाड्डू दिया। हाँ लाड्डू दिया दीदी के हाथ में, दीदी प्रभु राम के जीभा पे दिया। तो बोले मैंने ऐसे कभी कभी ऐसे चीज मिलता है, सब हमेशा के लिए नहीं मिलता है। ये जो देखिए सामान्य वस्तु, जो जो लाड्डू है कितने मतलब साधारण है, किंतु प्रभु ने स्वीकार किया, कितना असाधारण है, कितना सुंदर स्वादिष्ट है, इसको पाकर प्रभु ने बहुत प्रसन्न हुए और दिए, और बोले ठीक है मैं हमेशा सदा सदा के लिए आपके साथ रहेंगे, हाँ जब भी स्मरण करेंगे मैं आ जाऊँगा। हाँ तो बोले नहीं दीदी ऐसे नहीं हो सकते, आप मुझे माँ से के पास जाना है। बोले नहीं अभी बहुत व्यस्त है, बाद में कभी आऊँगा। हाँ तो इस प्रकार से जब उस समय जब चले जा रहा था वो बेहोश हो गया, उस समय वो बेहोश हो गया, वो बेहोश होते ही वहीं पे सोए रहे, और कुछ समय एक संत उस साइड से जा रहा था। तो संत देखे तो ये तो भावाविष्ट भक्त का लक्षण है, तो उसको उठाया फिर आश्रम में लेकर आया, सरजू में जब जा रहे थे स्नान के लिए, उसको आश्रम में लेकर आया। जब उसका नींद खुला तो वो पूछने लगे, ओ हमारे दीदी, ओ हमारे जीजाजी कहाँ है? हाँ दीदी कौन है? ना दीदी जानकी जी है और जीजाजी राम जी है, वो तो साक्षात में दर्शन किया, वो कहाँ है? तो जब देखे अरे तो बहुत उच्च जो सारा जन्म भर जो मैं साधन भजन को जिसको दर्शन नहीं कर पाया, ये बच्चा बालक उनका दर्शन किया। हाँ तो उनका बहुत मने प्रसन्नता आया कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, जैसे संतों का दर्शन मुझे मिला। तो कहने का उद्देश्य है उत्कंठा की, और भगवान ये उत्कंठा तभी देते भक्तों को जब वो बहुत मतलब उनके लालसा को, इसलिए भगवत दर्शन से बढ़कर है भगवत लालसा, दर्शन की लालसा, हे प्रभु मुझे लालसा दीजिए आपकी प्राप्ति के। तो इस प्रकार से भगवान देखिए जीव को भेजा, हम सब इस किस कर्म बस यहाँ आ गए, भगवान की कितनी करुणा है, धाम दिया, प्रभु के नाम दिया। हाँ कितना नाम धन सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा भाले छड़ा फटा कपड़ा है। हाँ शरीर क्लिष्ट है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, किंतु जिह्वा पे नाम चल रहा है, आंखों में आंसू की धारा बह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये साधारण वस्तु नहीं है। तो इसके लिए भगवान उसको मोह को हटा देते हैं। मोह हटाते कैसे? प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, जे गुरु को भेजते, संतों को भेजते, महान पुरुषों को भेजते, इसके आदेश के अनुसार जीवन को निर्वाह करना। किंतु हम लोग इतना नमक हराम है, इतना कुछ प्राप्त करके भी इस माने चीज पर कोई ध्यान नहीं देते। जो सत का सेवन करने से विवेक उत्पन्न होता है, और असत का सेवन करने से अधोगति होते हैं। सत का सेवन से विवेक उत्पन्न, जैसे बुद्धिमान विवेकमान विवेकी में अंतर क्या जानते? बुद्धिमान सत असत को निरूपण नहीं कर पाते, किंतु विवेकी सत असत का निरूपण कर पाते। और सत्संग किसको मिलता है? जो सत्संग करते, संतों का संग करते, उसको विवेक प्राप्त होता है। आप विवेक और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। इसीलिए निरंतर भगवत चिंतन मनन कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते, मेरा कहने का उद्देश्य है इस श्लोक में, ये भगवान की कितनी करुणा है, करुणा पर हमें से ध्यान रखना चाहिए। हमें से भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन करते समय भगवान की करुणा पर विचार कर, हे प्रभु आप कितनी कृपामय हैं, कितना करुणामय है कि आज मुझे आपके सामने, क्योंकि अगर आप कृपा नहीं की होते, हम संसार में कोई और जगह में घूमते रहते। किसकी भाग्य, कितने लोगों का भाग्य होता है कि भगवान का नाम जप करने का, भगवान के धाम में निवास करने का, संत संग करने का, सबके भाग में नहीं है। मनुष्यानम सहस्रेशु कश्चित जतत सिद्ध है, जतताम अभि सिद्धानम कश्चित मम व्यक्ति तत्त। कोई कुछ लोग तो इस लाभ को कभी ये नहीं करना चाहिए, मतलब हित्ता मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, लाभ को पूरा पूरा उठाना चाहिए। ब्रज धाम में जैसे वन में लोग कब जाते हैं? तपस्या करने के लिए, वहां भोगने के लिए थोड़ी जाते हैं। वन में जाते तप तपने के लिए, शरीर को तपाने के लिए, शरीर संसार में जो मोह है ये मोह से दूर होने के लिए। हाँ, जब तक शरीर संसार से मोह बना रहेगा, आसक्ति रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर संसार से मोह को आसक्ति कटाने के लिए सत्संग है बहुत अच्छा से, हाँ, रज की कृपा, संतों की कृपा की जाचना करनी चाहिए। हे रज देवी, हे ब्रज देवी, हे नाम प्रभु, आप कृपा करिए, आप जिह्वा पे स्फुरित हुए, मेरा कोई निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुमार कृपाय निर्भर करिया। कृपा पर निर्भर, हे प्रभु मेरा द्वारा कुछ होने वाला नहीं, आप कृपा करके आपके पास ही ले चलिए। इस प्रकार से प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, हर क्षण, जैसे माला हम लोग जप करते हैं, हर गोटी में प्रभु का दर्शन होना चाहिए, दर्शन की अभ्यास। नहीं तो क्या होगा, एक माला जप करने बहुत समय लग जाएगा। अगर हम अभ्यास करें प्रति मोती में कि प्रभु है, कितना सुंदर प्रभु का स्वरूप है, इस प्रकार करते 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 एक अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास जोग जुगते ना चेतसा नान्य गामिना, जिस इस प्रकार से अभ्यास बन जाएगा, तब धीरे धीरे से और असत संसार भोगों में मन नहीं जाएगा। आज हम भगवान से बिछड़े कारण कि आज हमारा मन भोगों में है, भले भजन कर रहे किंतु वृत्ति मन कहाँ पड़ा है? भोगों में है। ये मन को मारना है, मन मरेगा एकमात्र प्रभु के नाम से और किसी साधना से नहीं। साधना से कभी कभी अहंकार पुष्ट हो जाता है, मैंने इतना लाख नाम जप किया, मैंने इतना साल ब्रजवास किया, हाँ ये तो साधना है, किंतु इसमें अहंकार पुष्ट हो जाता है। किंतु प्रभु के नाम से दीनता से ये मन मरता है, मेरा दर क्या हुआ, सब तो यहाँ तो बहुत कीट मकोड़ा भी है, बहुत है, उसमें क्या लाभ है? नहीं, धीरे धीरे से अपने मन को मारना है, किसी प्रकार से मन को दैन्यता से लेकर, और मन मरेगा एकमात्र प्रभु के नाम से। तो प्रभुपाद जी लिखते कि बहिरंगा शक्ति से जीव जब फंस जाता है ये माया चक्कर में, इसको इससे उबारने के लिए, इससे वापस लौटने के लिए भगवान बहुत साधन देते, नाम धाम रूप गुण लीला, किसी एक में निष्ठा हो जाए, हाँ निष्ठा की बहुत जरूरत है, बिना निष्ठा से काम बनेगा नहीं। जो निष्ठा किस नितराम स्थिति थी निष्ठा, किसी में नितराम स्थिति हो जाए, मुझे ब्रज छोड़ के जाना नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, निष्ठा हो गया। नाम इतना समय से इतना समय तक तो नाम, ऐसे ऐसे संत महापुरुष से मैंने देखा है, शाम को 4-5 बजे सो जाते हैं और शाम को रात 9 बजे जग जाते हैं, 9:30 में जग जाते हैं और सारा रात भर नाम जप करते हैं, बोले कोई डिस्टर्ब नहीं करते और ऐसे अभ्यास बन जाते हैं। जितना रात को जितना अधिक अच्छा नाम जप होता है, ऐसे नाम जप दिन में नहीं हो पाते। तो इसलिए हमेशा प्रयास करें जल्दी जल्दी सो जाए, जल्दी जल्दी मैंने एक एक प्राप्ति के लिए कुछ कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि खा पी कर आराम से रहकर भजन कर लेंगे, बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत कम है। बार बार मनुष्य प्रभुपाद लिखे कि बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। हाँ, जे मनुष्य शरीर मिला बहुत भाग्य से, बहुत कृपा से मिला, अब उसके बाद ब्रज धाम मिला, उसके बाद प्रभु का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ नाम मिला, इसको कभी मैंने मतलब जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा लाभ ये मिल गया, निधि मिल गया, निधि, ये निधि का किसी प्रकार से लाभ उठाना चाहिए कि भाई मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला। हमेशा अंदर अंदर बहुत खुश होना चाहिए, मुझे बहुत मिला, इसको मैं कैसे रखूँ, कैसे इसको संभाले। हाँ, जब इस प्रकार से हम चिंतन करें, हाँ, और कि इसके लिए नाम जप के लिए सबको सम्मान दे। हाँ, आज क्या हुआ, आपस में सम्मान नहीं तो बाहर कैसे सम्मान देंगे। हाँ, सकले सम्मान करीते सकती देहनाथ जथा जथ तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। सबको सम्मान दे, छोटो बड़े कोई भी हो, सब एक ब्रजधाम में सब वैष्णव धाम है, कोई साधारण नहीं है, सबको सम्मान देना बहुत जरूरी है। कोई भी जैसे तैसे हो, जिस जिस प्रकार जिस भाव के हो उस भाव से, जैसे गौ माता है तो उसको कुछ भोजन दे देना चाहिए। हाँ, किसी पर किसी को दिल दुखाना नहीं चाहिए। हाँ, किसी में दिल दुख जाए तो उसको भागवत धाम जाने में अंतराय हो जाएगा, भागवत धाम जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा दूसरे के कि दूसरे के हित की भावना हो, दूसरे की सुख देने की चाह हो, किसी प्रकार से मुझसे किसी का कष्ट ना प्राप्त हो, इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दोनों हम सखा थे, सतम विहाय माम बंधो, सतम विहाय माम बंधो गतो ग्राम्यमति महिम तम स तम ग्राम्यमति। तुम ग्राम्यमति हो गए, ग्राम्यमति की तुम इंद्र सुख में फंस गए हो। इंद्र सुख से देखिए, हम अगर मान लीजिए हम ग्राम्यमति है, मान लिया कि मैं ग्राम्यमति हूँ, किंतु ब्रजधाम जो है ये प्रेम समुद्र है, ये प्रेम समुद्र है, इसमें अगर कोई रजो कोई कामी क्रोधी लोभी मोही कोई भी आ जाए, ये जैसे मीठा समुद्र में अगर लाखों टन अगर नमक डाल दिया जाए, वो उसको कि नमक बना देंगे, नहीं, उसको मिठास बना देंगे। हाँ, जिस प्रकार से समुद्र में लाखों टन अगर नमक डाला जाए, नमक को क्या कर देंगे, मिठास बना देंगे। इस प्रकार से ये प्रेम समुद्र है, कोई भी कामी क्रोधी लोभी मोही ग्राम्यमति, ग्राम्यमति मतलब इंद्र सुख में जो उसका मन रचा पचा है वो भी आ जाए तो उसको भी प्रेममय बना देंगे। हाँ, इसलिए देखिए ये सब वाणी कहने का उद्देश्य आचार्यों का है। हाँ, ये साधारण की बात नहीं है, हम लोग बढ़ जाते हैं इसका मतलब, इस वाणी में बहुत बल है किंतु हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि आचरण में नहीं है। आचरण जब तक नहीं है तब तक उपदेश करना व्यर्थ है, इसलिए पहले आचरण करें, उसके बाद खुद मिठास नहीं पाया और मिठास का उपदेश किया, और मिठास किस काम की, खुद ही मिठास चाख नहीं पाया। इसलिए हमें से प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे ये रस चखाए, ये प्रेम रस मुझे पिलाए। हाँ, और संतों को आप ही जैसे एक जगह लिखे हैं, भगवान ही जगत बने, आ जगत बनाने वाला भगवान है और बनने वाला भगवान है, इस सब प्रभु मय है, ये दृष्टि हो जाए तब जाके देखिए कितना आनंद है। इसलिए ब्रज धाम में इस प्रभु की कृपा आज वात्सल्यता, काल घुड़ा के इस प्रभु ने जो सुंदर भाव से वर्णन किए थे कि भगवान वात्सल्यता 3-4 श्लोकों में जो है, सतम विहाय माम बंधो, हे प्रभु हे बंधो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ग्राम्यमती महिम गत पृथ्वी चले गए, हाँ पृथ्वी में जाकर क्या किया, नाना ज्योनि में भ्रमण किए। किंतु देखिए भगवान की कितनी करुणा, जे पुरंजन स्त्री की प्राप्ति ज्योनि प्राप्त हुई वैदर्भी, वहां जाकर उपदेश कर, तुम सखा थे दोनों एक साथ रहे किंतु आज तुम भोगों में चले गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ याद नहीं है, आज एक काम करो फिर सब फिर आगे चलकर और उपदेश करेंगे कि विरक्त का जीवन, ये जो अध्याय है ये वैराग्य का शिक्षा देते हैं, वैराग्य जीवन में वैराग्य लाना चाहिए, मुझे कोई अच्छा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र प्रभु के नाम में रूप में लीला में धाम में आसक्ति हो जाए, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रोज मेजरमेंट थर्मोमीटर से नापना चाहिए कितना हमारे विषय में आसक्ति कम हो रहा है, कितना प्रभु के नाम में आसक्ति बढ़ रहा है, इस पर थर्मोमीटर से रोज नापना चाहिए कि मैं कहाँ है कहाँ जा रहे हैं, अगर नहीं है तो मानो कि आपने पैर पर कुड़ार मार रहे हैं, अपने पैर पर हथियार मार रहे हैं, इसलिए हमें से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, हमें से भगवान से रोज धन्यवाद देना चाहिए, हे प्रभु मुझे मुझ पर बहुत कृपा की आपने है, क्योंकि मुझे आपने दर्शन अपना सुंदर स्वरूप दिए, धाम दिए, नाम दिए, हे प्रभु इसमें लग जाए मन, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एक मिनट में, मैं अपना दुर्गति बता रहे हैं, कुछ दिन ऐसे नोटबंदी चल रहे हैं, नोटबंदी कि मतलब 500-1000 का नोटबंदी बंद कर दिया, तो मुझे उस दिन से कुछ पेपर देखने का आदत बन गया था, कुछ रोज पेपर हेडलाइन क्या आज बोले हैं, तो कुछ दिन से ऐसे चल रहा था, सत्य घटना सुना रहे तो ऐसे एक नेशा हो गया कि रोज देखना है, मतलब ना देख ऐसे देखने की इच्छा नहीं, कोई जा रहे दूर से खड़े होकर फ्रंट पेज में क्या है इसको देखना है, तो और वहां जाकर जॉब में बैठने से वो याद आता है, वो चिंतन होता है, हाँ आज बैंक वालों ने इतना पैसा घटाला कर दिया, आज बैंक एक व्यक्ति ने इतना सहायता करना चाहते सारा संसार इससे पीछे पड़ रहा है, शुद्ध चिंतन वही हो रहा है, कृष्ण चिंतन कृष्ण का स्मरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, हम बोले हरे भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे, दिन दिन पर मोती खराब होते जा रहे, मुझे तो बहुत दुख आया, फिर मैं सोचा आज इस रास्ता से नहीं जाएंगे, इस रास्ता से जाएंगे, यहाँ किसी से मिलेंगे नहीं, हाँ क्योंकि आपने को रोकना है, संसार कैसे रोकेगा, आपने को चेक करना, आपने को जे मेरा मोती ग्राम्य मोती संसार सुख में जा रहे इसको रोकना है, किसी प्रकार से किसी हालत में जाने नहीं देंगे, हाँ तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं देखना नहीं है नहीं है नहीं है, हाँ फिर 2-3 से और मुझे उस तरफ मन को समझा दिया कि देखिए तुम्हारा ये लक्षण नहीं है, आज ये पाकिस्तानी है काल पाकिस्तान में जन्म हो सकता है, आज भारत का गुण गा रहे काल पाकिस्तान में जन्म होकर भारत का बदनाम करोगे, तो इस प्रकार इसको इस छोड़ो अपना भजन करो, मेरा मन कैसे समझाया, हाँ तो कम से कम इसी तरह समझा बुझा कर भगवान में चित्तवृत्ति लगाना चाहिए, कहने का उद्देश्य यह है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय।